कृष्णा, महाभारत के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से महाभारत की कथा पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कथा ये हो चुकी है कि पांडवों का जन्म हुआ और यहाँ कौरवों का जन्म हुआ। किस प्रकार कौरवों का जन्म हुआ, हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ा हुआ है, ये चर्चा हम लोग पिछली बार कर चुके हैं। और ये भी चर्चा हुई थी कि कैसे उससे पहले का इतिहास, कौरवों का इतिहास, महाराज शांतनु से लेकर आगे कैसे उनके पुत्र और फिर भीष्म इत्यादि का वर्णन। तो अब जब पांडु महाराज वन में रह रहे थे, हम लोग सुन चुके हैं कि एक ऋषि ने श्राप दिया उन्हें कि जब भी वे अपनी पत्नी के सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और वे वहां ऋषि मुनियों की तरह रह रहे थे, संतानें नहीं थी, तभी बहुत दुख था उन्हें कि मैं अपने पितरों का ऋण नहीं चुका पा रहा हूं। ऐसा उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं ये ऋण को चुका सकूं। वो कहते हैं कि जब एक बालक जन्म लेता है तो वो कुछ ऋण लेकर आता है और उन ऋण को उसको चुकाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि हम सब के ऊपर कई ऋण होते हैं। देवर्षि भूतात्र निणाम पितृणाम ना किं करो नायम ऋणी चराजन। शास्त्र कहता है कि हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है, क्योंकि देवता हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। ऋषियों का ऋण है, क्योंकि ऋषि मुनि हमें शास्त्र, ज्ञान, भगवान की भक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। देवर्षि भूतात्र निणाम, फिर बहुत से जीवों का, अन्य जीवों का हमारे ऊपर ऋण है, हमारे संबंधियों का हमारे ऊपर ऋण है, पितरों का ऋण है हम सबके ऊपर, उन्होंने हमें परंपराएं दी हैं। तो देव ऋषि भूतात्र निराम पितृणाम, तो इन सब के ऋण को लेकर हम सब आते हैं और मनुष्य जीवन में हमें इन ऋणों को चुकाना चाहिए। तो देवताओं का ऋण चुकाया जाता है यज्ञ कर। जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, तो देवताओं के ऋण चुक जाते हैं। ऋषियों के ऋण चुकाए जाते हैं स्वाध्याय के द्वारा, शास्त्र का अध्ययन करके, भगवान की कथा को सुन के, शास्त्र को सुन के ऋषियों के ऋण को चुका सकते हैं। इसी तरह पितरों के ऋण को श्राद्ध करके चुकाया जाता है, और श्राद्ध करने के लिए पुत्र की आवश्यकता है। तो ऐसे सारे वर्णन शास्त्रों में हैं, लेकिन इसी श्लोक में कहा गया है कि हाँ, ये सारे ऋण हैं हमारे देव ऋषि भूतात् निणाम पितृणाम, लेकिन वो व्यक्ति ना किं करो नायम ऋणी चराजन, सबसे अच्छा तरीका इन सारे ऋणों को चुकाने का क्या है, वो व्यक्ति गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, जो व्यक्ति भगवान मुकुंद, मुक्ति प्रदाता भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के शरण चला जाता है, शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, तो जो व्यक्ति भगवान की शरण चला जाता है उसके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता, उसके सारे ऋण अपने आप चुक जाते हैं। फिर वो चाहे देवताओं का ऋण हो, माता पिता का ऋण हो, पितरों का ऋण हो, अन्य जीवों का ऋण हो, कोई भी ऋण क्यों ना हो, ये ऋण, ऋण आप समझते हैं ना, लोन, कर्जा। तो देखिए, लोग कहते हैं कि इस जीवन में हमें सर पर कर्जा नहीं रखना है, लेकिन अभी हम जन्म लेते हैं कर्जा लेकर आते हैं, जन्म से ही इतने सारे लोगों का कर्जा होता है हमारे ऊपर। तो जो व्यक्ति भगवान श्री मुकुंद की शरण चला जाता है, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, उसको सारे ऋणों से मुक्ति मिल जाती है, फिर उसके लिए कोई ऋण नहीं है, न देवताओं का, न ऋषियों का, न अन्य लोगों का। तो इसीलिए भगवान की शरण जाने का एक लाभ यह भी है कि कि केवल भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से हम अपने भौतिक कार्यों को भी पूरा कर लेते हैं, हम ऋणों को भी चुका देते हैं। वैसे भगवान की भक्ति करने से तो बहुत लाभ है। भागवत के सातवें स्कंद में लिखा है कि जब प्रहलाद महाराज को भगवान वरदान दे रहे थे तो वहां पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि प्रहलाद को वर देते हुए भगवान ने समझाया कि जब कोई जीव एक परिवार में जन्म लेता है तो उससे पहले भी वो किसी परिवार में जन्म ले चुका है, लेकिन जब वो जीव भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो न केवल इस जन्म के अपने परिवार को बल्कि पूर्व जन्म में जिस परिवार में उसने जन्म लिया था उसको भी मुक्त कर देता है। ये भागवत कहता है। तो भक्ति कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि भक्ति आत्मा के स्तर पर है, इसलिए जन्मों के परे है। अन्य सारी चीजें जो शरीर से संबंधित हैं वो शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भक्ति शरीर से संबंधित नहीं है। इसीलिए भागवत में लिखा है कि पूर्व जन्म में भी किए गए, अगर पूर्व जन्म में भी जो परिवार हुए हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। देखिए भक्ति की महत्ता, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके पूर्व जन्म के आपके माता पिता को लाभ दे सकता है। हमारे कार्य तो इस जन्म के माता पिता को लाभ नहीं दे पाते हैं, पूर्व जन्म की तो बात ही और है, लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि पूर्व जन्म को भी, पूर्व जन्म में भी जिस परिवार में जन्म हुआ था हमारा, उनको भी लाभ मिलता है अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं, वैष्णव बनते हैं, भगवान की शरण जाते हैं। तो इसलिए शरण जाने से सारे ऋण चुकता हो जाते हैं हमारे। तो पांडु महाराज ने इसलिए फिर संतान की उत्पत्ति की कि वो चाहते थे सामाजिक नियम के अनुसार ऋण चुका दें। और हमने पिछली बार सुना था कैसे युधिष्ठिर इत्यादि का धर्म जन्म हुआ, भीम का जन्म हुआ, जन्म होते ही माँ के हाथ से गिर पड़ा और आप जानते हैं कि जहाँ गिरा वहाँ चट्टान चूर चूर हो गई, छोटे से बालक थे, ये भीम की शक्ति थी। तो अब ऐसा हुआ कि एक समय पांडु महाराज अपने आप को वश में नहीं रख पाए और माद्री जो उनकी दूसरी पत्नी थी उनके साथ सानिध्य के प्राप्ति करने लगे और उतने में उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि श्राप दिया था। अब माद्री रोने लगी, कुंती भाग कर आई, क्या हुआ, अरे तो देखा कि मर गए। कुंती चिल्लाने लगी, माद्री को डांटने लगी, तुम्हें पता था ये श्राप है, फिर तुमने ऐसा क्यों कार्य किया। माद्री ने कहा नहीं नहीं मैं मना कर रही थी लेकिन क्या करें। तो खैर कुंती ने कहा ठीक है मैं बड़ी हूं तो मेरा अधिकार है और पति की जब चिता जलाई जाएगी तो मैं भी साथ में उसमें जल जाऊंगी। इसको सती प्रथा कहते थे। तो माद्री ने कहा नहीं, अगर मैं इन पांचों बच्चों को पालूंगी तो मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपकी संतानों को भी अपनी संतान की तरह प्रेम कर पाऊंगी या नहीं, मुझे विश्वास नहीं है अपने ऊपर, हो सकता है मैं भेद कर दूं अपनी संतानों में, अर्थात नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे तो अपनी संतानों में और आपकी संतानों में हो सकता है मैं भेद कर दूं, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, आपके अंदर है, मैं जानती हूं आप कभी भेद नहीं करेंगी, इसीलिए आप इन बच्चों को संभालिए, मैं सती हो जाऊंगी, मैं पति के साथ उनकी चिता पर लेटूंगी। दरअसल ये सती प्रथा क्या है, अंग्रेजों के समय इसको एक बहुत बुरी प्रथा बनाकर, अंधविश्वास बनाकर बंद कर दिया गया। इसका और एक कारण भी था, सती प्रथा का अर्थ होता था पत्नी स्वतः अपनी इच्छा से पति के साथ अग्नि में प्रवेश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि पति के विरह की अग्नि से ये अग्नि ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो प्रवेश करती थी अपनी इच्छा से। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि पत्नी नहीं भी चाहती है, पति की मृत्यु हुई उठाकर उसको फेंक देते थे अग्नि में, सती हो जाओ जबरदस्ती, पत्नी पत्नी चिल्ला रही है नहीं नहीं नहीं, मुंह बंद किया फेंक दिया अंदर। तो ये गलत था। सती प्रथा का अर्थ है जो अपनी इच्छा से स्वतः। तो माद्री ने स्वीकार किया और फिर माद्री और पांडु महाराज की चिता बनाई गई और उनको वहीं पर उनका संस्कार किया गया, दाह संस्कार। वहीं ऊपर अभी जंगल में थे, वापस नहीं आए थे क्योंकि बहुत दूर थे, हिमालय तक निकल गए थे। और कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ हिमालय, वहाँ से शरीर को लाना संभव नहीं था। इसीलिए वहीं ऋषि मुनियों ने चिता जला दी पांडु महाराज की। और फिर वहाँ से बहुत सारे ऋषि कुंती महारानी के साथ इन पांच पुत्रों को लेकर आए, ये बताने के लिए कि पांडु के ही पुत्र हैं। हस्तिनापुर में आए, उनकी अस्थियां लेकर आए थे माद्री और पांडु महाराज की। तो फिर उनका दाह संस्कार तो हो चुका था, बाकी जो क्रियाएं करनी थी, नदी में जाकर, गंगा में जाकर, गंगा पूजा की जाती है, तो सारी क्रियाएं करके फिर भीष्म को जो सारे ऋषि मुनि आए थे उन्होंने सौंपा कि ये पुत्र हैं पांडु के, ये युधिष्ठिर हैं, ये भीम हैं, ये अर्जुन हैं और नकुल और सहदेव। तो कुंती महारानी के साथ फिर वो पांचों ने प्रवेश किया। तो जब ये कार्य हुआ उस समय व्यासदेव सत्यवती के पास आए और व्यासदेव ने सत्यवती से कहा, सत्यवती कौन है, उनकी माता है व्यासदेव की। तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि अभी अच्छा समय पूरा हो गया, पांडु महाराज की मृत्यु हो गई, जितना अच्छा समय था वो अब समाप्त हो गया, अब से बुरा समय शुरू होने वाला है। ऐसा काल शुरू होगा जहां धोखाधड़ी होगी, जहां छल कपट होगा, अधर्म होगा, अधर्म बड़ी तीव्रता से बढ़ेगा। इसीलिए अब आपके लिए अच्छा है कि आप यहां से चली जाएं। आप इसको नहीं देखिए, अभी तक आपने धर्म को देखा है, आपने अच्छी चीजें देखी हैं, छल कपट नहीं देखा, लेकिन अब आपके ही परिवार में और कहीं नहीं, आपके ही परिवार में धृतराष्ट्र का आने वाला पुत्र, व्यासदेव ने घोषणा उस समय कर दी थी कि धृतराष्ट्र का पुत्र ये जो जन्म ले चुका है दुर्योधन, ये आने वाले समय में ये सारे कुल का नाश करेगा। और उन्होंने अपनी माता से कहा, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी आंखों के सामने अपने कुल का नाश होते हुए देखें, इसीलिए आप इसी समय वन की ओर प्रस्थान कीजिए। और सत्यवती ने स्वीकार किया। सत्यवती ने तुरंत उस राजमहल को त्याग दिया, अंबिका और अंबालिका को साथ में लिया। अंबिका अंबालिका, जो अंबिका माता थी धृतराष्ट्र की और अंबालिका माता थी पांडु महाराज की, तो पांडु की तो मृत्यु हो गई, इसीलिए अंबालिका को ले जाना चाहती थी, लेकिन अंबिका ने कहा मैं भी चलूंगी साथ में। तो तीनों चले गए और ऐसा वर्णन है कि फिर वन में जाकर उन्होंने भगवान पर ध्यान किया और फिर योग अग्नि के द्वारा अपने देह को समाप्त कर दिया। तो ऐसे सत्यवती वहां से चली गई, क्योंकि अब व्यासदेव ने घोषणा कर दी कि अब जो समय आने वाला है वो ठीक नहीं है, और वो उसी समय से प्रारंभ हो गया। अब ये बच्चे थे, खेला करते थे आपस में। भीम को कौरवों से बहुत प्रेम था, बड़ा प्रेम। वो अपना प्रेम कैसे दिखलाते थे, वो कई कौरवों को अर्थात कई बच्चों को एक साथ बाल से घसीटते हुए भूमि पर ले जाते थे। उनके अंदर तो हजार हाथियों का बल था, तो ऐसे घसीटते हुए ले जाते। महाभारत में वर्णन है, उनके घुटने छिल जाते, उनके पांव हाथ में चोट लग जाती, मस्तक पर लग जाती, लेकिन भीम खींचते हुए ले जाते प्रेम से। ये प्रेम था भीम का, बहुत प्रेम करते थे। कभी कभी सारे कौरव फल तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते कुछ दुर्योधन के भाई, तो भीम देख लेते, पहले उनको ऊपर चढ़ने देते, जब वो चढ़ जाते तो नीचे से जाके वो पेड़ इतनी जोर से हिलाते कि फल के साथ साथ वो लोग भी नीचे टपक पड़ते, धार गिर जाते। ये प्रेम था भीम का, प्रेम करते थे। महाभारत में वर्णन है कि ये प्रेम था, द्वेष से नहीं कर रहे थे। दुर्योधन ने जो भीम के साथ किया वो द्वेष से किया, लेकिन भीम ये जो खेल रहे, खेल खेल में बच्चे खेलते हैं ना, एक दूसरे को कभी मारते हैं, कभी कुछ कर, ये खेल में। भीम के हृदय में कोई द्वेष नहीं था, प्रेम था, तो प्रेम प्रेम में कर लेते थे ऐसे। कभी कभी ऐसे करते कि दस पुत्रों को एक साथ पानी में जब खेल रहे होते नदी में, तो दोनों हाथों से पांच इधर और पांच इधर ऐसे नीचे दबा देते थे। अब वो बेचारे तड़प रहे हैं, अंदर तड़प रहे हैं, प्राय मरने वाले हैं, बस फिर बाहर निकालते थे, फिर थोड़े समय बाद डाल देते थे। तो ऐसे बहुत प्रेम करते थे भीम अपने भाइयों से, खास करके कौरवों से। तो ऐसे खेला करते। तो दुर्योधन ने देखा कि ये जो भीम है ये बहुत शक्तिशाली है, ये हमारे लिए खतरा है, अगर हम इसको मार दें तो उसके बाद एक दिन युधिष्ठिर को भी मार देंगे, अर्जुन को भी मार देंगे, फिर हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा राज्य के लिए। देखिए बालक होते हुए भी कैसे ये भावना दुर्योधन में आ गई, ये गलत भावना। आपको स्मरण है कि जब वो गर्भ में थे तब गांधारी ने क्या किया था, दोनों हाथों से अपने गर्भ को मार लिया था द्वेष से, कि कैसे कुंती का पहला पुत्र हो गया, मेरा पुत्र नहीं हुआ। तो माता के द्वेष की भावना पुत्र में आ गई, जन्म से द्वेषी, ये सत्य है। प्रहलाद महाराज जन्म से भक्त कैसे हुए, उनकी मां ने जब वो गर्भ में थे नारद मुनि से भागवतम का श्रवण किया, इसलिए वो भक्त बने। गांधारी ने द्वेष किया, इसलिए दुर्योधन द्वेषी बना। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है माता पिता की कि कैसे वो अपने बच्चों को बड़ा करें, क्या संस्कार दें। तो द्वेष से भरा था, सोच रहा था कैसे मारे, तो उसने सोचा कि भीम को खाने की बहुत आदत है, भीम खाते बहुत थे। भीम का एक नाम है वृकोदर, वृकोदर, उदर मतलब पेट, वृको मतलब अग्नि। तो जिसके उदर में या जिसके पेट में हमेशा अग्नि जलती रहती है, मतलब हमेशा उसको भूख लगती रहती है, उसे भीम कहते हैं। भीम का नाम है वृकोदर, बहुत खाते थे। जब एक बार कुंती महारानी के साथ पांचों भाइयों को भागना पड़ा था, आगे वर्णन आएगा, तो जंगल में रहते थे लोग अकेले, तो जो भी खाने को मिलता था, छह लोग थे ये, पांच भाई और कुंती महारानी उनकी माँ, तो छह लोग थे, तो जो भी खाने के लिए मिलता था उसके दो भाग होते थे, एक भाग भीम के लिए और बाकी एक भाग में बाकी पांच लोग खाते थे। और उस एक भाग में भी भीम का तो कभी पेट नहीं भरता था, भीम भूखे रहते थे। तो खैर भीम को मारने की योजना बनाई, बहुत सुंदर नदी के किनारे उन्होंने एक उद्यान बनवाया और कहा हम सब जाकर खेलेंगे वहां पर। और दुर्योधन ने बहुत अच्छे रसोइये जो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं उनको लगाया कि आप सबसे अच्छा भोजन बनाओ। और फिर जब सब खेल लिए, खेल कर आए बैठे, तो सबको भोजन परोसा गया, तो भीम के भोजन में कालकूट नाम का विष मिला दिया। कालकूट बहुत शक्तिशाली विष होता है, ये वही विष है जो भागवत में वर्णन आता है कृष्ण लीला में पूतना अपने स्तनों पर लगाकर आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रम सयापायदप्य साध्वी। तो वो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, तो वो कालकूट जहर विष दुर्योधन ने मिला दिया कि खाते ही मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। भीम ने खा लिया, उनको कुछ हुआ नहीं, सब खेलने लगे, पानी में खेले, सब जगह खेले। दुर्योधन देख रहे थे, अरे क्या हुआ इसको, ये तो खाकर भी कुछ नहीं हो रहा, इतना भारी जहर। फिर शाम के समय धीरे धीरे उसे नींद आने लगी भीम को, और फिर अचानक अचेत हो गए। दुर्योधन ने सोचा मर गया, जल्दी से वहीं वृक्ष की जो रस्सियां बनी हुई थी उनसे बांधा और ऊपर से फेंक दिया नदी में, गंगा में। और उनको बड़ी खुशी हुई, चलो काम खत्म, भीम गए। अब भीम जब ऊपर से गिरे तो बड़ी तेजी से गिरे, सीधे नीचे चले गए नागलोक में, जल के नीचे नागलोक होता है, तो नागलोक में चले गए। और वहां वर्णन है कि अभी वो बेहोशी थे, लेकिन बेहोशी में भी उनके शरीर का वजन इतना था कि कई नाग मर गए उनके शरीर के नीचे दब के, उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया था, केवल ऊपर से आए थे। और फिर क्या हुआ कि नागों ने देखा, रे कौन आ गया, तो उन्होंने डसना प्रारंभ किया। तो क्योंकि नागों ने डसा, तो जो विष उनके जहर उनके शरीर में पहले से था और ये विष, तो दोनों को मिलने से विष का असर खत्म हो गया। ऐसा कहते हैं कि विष को विष से मारा जाता है, सांप का विष समाप्त करने के लिए कभी कभी विष दिया जाता है। तो दूसरा विष लगने से वो विष समाप्त हो गया, भीम उठ गए एकदम। और जब भीम उठे तो देखा, अरे इतने सारे सांप मेरे आसपास। भीम ने अपनी सब रस्सियां खोली, सांपों को पकड़ा, एक एक को मारने लगे, बहुत जोर जोर से उठा उठा के मारने लगे। सारे सांप घबरा गए, भागे वसुकी के पास। दो वहां पर श्रेष्ठ सर्प थे, एक वसुकी और एक आर्य। तो उन्होंने दोनों से कहा कि ऐसे कोई व्यक्ति आया है, बहुत परेशान कर रहा है, हम लोगों को मार रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे कौन है, देखें। जाकर देखा तो आर्यक जान गए। आर्यक कौन थे? ये शूरसेन के नाना थे। शूरसेन किसके पिता हैं, किसी को याद है? भीम से कौन संबंधित है? शूरसेन किसके पिता है? वसुदेव के। और भीम से क्या संबंध है? हाँ, कुंती कौन है? शूरसेन की पुत्री, वसुदेव की बहन है कुंती। तो शूरसेन की पुत्री है कुंती और शूरसेन के नाना है आर्यक। उन्होंने देखा कि अरे अरे, ये तो हमारे ही परिवार का है, अपना ही बच्चा है। जल्दी जल्दी उसको गले लगाया, लेकर आए। उन्होंने वासुकी को कहा कि इसको वो कुंड दिखाओ। उनके पास कई कुंड थे, 8-10 कुंड, जिनमें जो पदार्थ पड़ा था, द्रव्य पड़ा था, उसको पीने से 1000 हाथियों का बल आ जाता था, एक कुंड में इतना था। तो उन्होंने कहा जितना पी सकता है इसको पीने दो, कुंड पूरा। तो भीम को कहा गया। अब भीम को बहुत भूख लगी थी, वहां पे 8 कुंड थे, वो सारे 8 कुंडों का पानी पी गए, वो जो द्रव्य था पूरे 8 कुंड का समाप्त कर दिए। और उसके बाद उनको नींद आ गई, क्योंकि इतना पी लिया था, तो वो सो गए। ऐसा वर्णन है कि 8 दिन तक वो सो रहे थे, कंटिन्यूस लगातार 8 दिन तक। अब यहां ऊपर सब लोग वापस आ गए, तो पांडवों ने देखा भीम नहीं दिख रहे, तो सोचा शायद पहले चले गए होंगे। तो पांडव जल्दी जल्दी आए, देखा भीम नहीं है। कुंती महारानी के पास गए, कुंती को कहा कि भीम आए क्या? तो कुंती ने कहा नहीं, वो तो तुम्हारे साथ गए थे। कहा नहीं, हमारे साथ तो वापस नहीं आए, हमें लगा पहले आ गए, हमने बहुत ढूंढा। और उस समय युधिष्ठिर को स्मरण आया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने उसे सोते हुए देखा था, वो बहुत अचेत होकर सो रहा था, मुझे लगा वो सो रहा है, लेकिन अब मुझे स्मरण आ रहा है वो सो नहीं रहा था, कहीं उसको किसी ने मार तो नहीं दिया। जैसे कुंती ने सुना घबरा गई, उन्होंने तुरंत विदुर को बुलाया, जल्दी विदुर को बुलाओ। और उन्होंने विदुर से कहा कि मैं जानती थी कि दुर्योधन ये दुष्ट है, अब इसने मेरे पुत्र को मार डाला है। विदुर ने क्या कहा? विदुर ने कहा शांत रहो, किसी से ये बात नहीं कहना। कुंती ने कहा मेरे पुत्र को मार दिया है। विदुर ने कहा अगर तुमने किसी से कहा तो जो तुम्हारे बाकी 4 पुत्र हैं इनको भी मार देंगे लोग, अगर इनकी रक्षा करनी चाहती हो चुप रहो, किसी से कुछ मत कहो। अगर आज कहोगी फैलाओगी कि दुर्योधन ने किया है, फिर दुर्योधन से पूछा जाएगा, तो दुर्योधन और भड़क जाएगा और तुम्हारे 4 पुत्रों को भी मार देगा, चुप रहो। कुंती कुछ कर नहीं पाई, चुप रहना पड़ा, क्योंकि अकेली थी वहां पर। तो सब दुखी थे और ये 8 दिन तक भीम आराम से सो रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। 8 दिन के बाद उनकी नींद खुली, आहा बड़ा आराम आया 8 दिन बाद। और फिर नागों ने उनको फिर से तट पर लाकर रख दिया, उनको बहुत से हीरे जवाहरात दिए, अच्छे कपड़े दिए, और फिर उनको कहा कि अब आपने जितना ये कुंड का द्रव्य पी लिया है, अब आपके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। 10,000 हाथी, आप सोचिए हमारे लिए तो एक ही हाथी काफी है, अगर यहां पर आ जाए तो हम सारे मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो केवल ऐसे थोड़ा घूम जाएगा हम लोग सब, लेकिन 10,000 हाथियों का बल। इसीलिए युद्ध के समय भीम को हाथियों को मारने में कोई चिंता नहीं होती थी, जब हाथी को मारना होता था तो भीम को भेजते थे जाओ, और भीम ऐसे उठा के घुमा के पटक देते थे उनको। जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल हो उसको एक हाथी मारने में क्या तकलीफ है। तो भीम आए, बड़े शक्तिशाली होकर बाहर आए, तुरंत माँ के पास गए। कुंती ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, भीम वापस आ गए। युधिष्ठिर ने देखा, सब ने देखा, और भीम ने कहा, मुझे दुर्योधन ने कुछ मिला दिया था खाने में विष, क्योंकि नीचे जब गए तो बताया उनको कि तुम्हारे शरीर में विष था। तो कुंती ने कहा, बोलना नहीं किसी से, किसी से नहीं कहना। तो उस दिन से तब तक भीम के हृदय में कोई द्वेष नहीं था, कोई क्रोध नहीं था कौरवों के प्रति, प्रेम करते थे, भाइयों की तरह खेलते थे। लेकिन उस दिन से सभी पांडव सतर्क रहने लगे और भीम को क्रोध आ गया कि एक दिन इनको दिखाऊंगा, आज तो मेरी माँ ने कह दिया चुप रहो, लेकिन आगे इनको दिखाऊंगा। तो ये द्वेष बढ़ गया। तो उसके बाद जब भीम वापस आ गए, दुर्योधन बड़ा घबरा गया कि अब तो इस सबको पता चल जाएगा, तो लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा तो चुप हो गए। और एक बार उनको जहर दिया, वही कालकूट जहर, ऐसा वर्णन है महाभारत में कि एक बार और दिया खाने में मिलाकर, फिर से मित्रता की और फिर से दिया कि अब तो ये मरेगा, और इस बार बहुत तेज जहर दिया था कि तुरंत मर जाए। और भीम खाने वाले थे उससे पहले युयुत्सु, आपको हमने बताया था युयुत्सु कौन है, किसी को याद है, पिछली बार बताया था। हाँ जी, कौरवों के एक भाई है, 101 नंबर, 100 भाई नहीं छोड़कर। तो युयुत्सु ने आकर भीम को कहा, भीम इसको खाना नहीं, इसमें जहर है, मेरे भाई ने मिलाया है, दुर्योधन ने, मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, इसलिए बता रहा हूं नहीं खाना। भीम ने कहा, चिंता मत करो, ये अभी जहर कुछ नहीं कर सकता मेरा। भीम खा गए उसको और कुछ नहीं हुआ उनको, क्योंकि इतने सारे नागों ने जब जहर भरा था, जहर किया था, तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला। तो इस तरह से दुर्योधन प्रयास कर रहा था मारने का। देखिए, कल परसों दो दिन पहले हम लोग रामायण की चर्चा कर रहे थे, कल भरत मिलाप की चर्चा हो रही थी, जहां एक भाई दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार था, और यहां एक भाई दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार है। सत्ता का लालच, शक्ति ऐश्वर्य का लालच, ये जो सत्ता है ये बहुत बहुत गहरा नशा है। सत्ता, कुर्सी, ये सबसे बड़ा नशा है। बाकी जो नशे हैं, जैसे आप शराब पिए या कुछ और करें, ये छूट सकते हैं, सत्ता का नशा नहीं छूटता। इसलिए देखिए, हमारे राजनेता 80-80 साल के हो जाते हैं, पांव से चला नहीं जाता, दो लोग उनको पकड़ के चलाते हैं, लेकिन कुर्सी पर बने रहते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। क्या लाभ है ऐसे जीवन का। तो सत्ता की आसक्ति, तो दुर्योधन को सत्ता से आसक्ति, राजा बनना चाहता था, तो इसीलिए दुर्योधन ने मारने का बहुत प्रयास किया। तो अब ये थोड़े बड़े हो गए थे, इनको कुछ सिखलाना था। भीष्म सोच रहे थे कि किससे मैं सिखलाऊं, धनुर्विद्या कौन सिखाएंगे। और उधर द्रोण का जन्म हुआ था, द्रोणाचार्य, ये ब्राह्मण पुत्र थे, ब्राह्मण परिवार में भरद्वाज पुत्र हैं ये, भरद्वाज जी के ऋषि भरद्वाज पुत्र द्रोण, बहुत श्रेष्ठ हैं। तो द्रोणाचार्य का जन्म हुआ, द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सीखी, ब्राह्मण थे, गरीब थे। जिस समय वो सीख रहे थे तो भरद्वाज मुनि के एक मित्र थे पृषत, राजा पृषत, और उनका एक पुत्र था द्रुपद, तो वो भी गुरुकुल आया करता था। तो द्रुपद और द्रोण की बहुत मित्रता हो गई, तो दोनों वहां रहा करते थे। अब द्रोणाचार्य बड़े हुए, विवाह हुआ, संतान हुई उनके, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इसलिए नाम हुआ क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो वो घोड़े की तरह पुकारने लगा, अश्व। तो ऋषि मुनियों ने कहा क्योंकि इसने अश्व की तरह आवाज की है, इसीलिए इसका नाम अश्वत्थामा होगा। तो अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली था, तो अश्वत्थामा उनका पुत्र हुआ द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य ने सुना कि परशुराम जी बहुत कुछ दान दे रहे हैं, तो वो परशुराम जी के पास गए, परशुराम जी की भेंट हुई, परशुराम जी के दर्शन किए, उन्होंने अपना परिचय दिया द्रोणाचार्य ने कि मैं द्रोण भरद्वाज पुत्र द्रोण हूँ, ब्राह्मण हूँ, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब जब ब्राह्मण मांगने आया करते थे तो उनको देना होता था, ये एक प्रथा है, तो ब्राह्मण को कभी नकारा नहीं जाता। तो उन्होंने कहा मैं मांगने आया हूँ। तो परशुराम जी ने उनसे कहा कि देखो जितनी भूमि मैंने जीती थी वो सारी भूमि मैंने कश्यप मुनि को दे दी है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना धन है ना भूमि है, दो ही चीजें हैं मेरे पास, एक मेरा शरीर और दूसरी मेरी अस्त्र विद्या जिसको मैं जानता हूं, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मेरा शरीर चाहिए ले जाओ, अस्त्र विद्या चाहिए ले जाओ। तो उस समय द्रोणाचार्य जी ने उनसे अस्त्र विद्या सीखी, अस्त्र शस्त्र चलाना, बड़े निपुण हो गए उसमें। तो ऐसे एक दिन ये हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर में रह रहे थे कृपाचार्य के घर में, क्योंकि उनकी उनका विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ था, कृपी से, तो वहीं रह रहे थे। तो एक समय कौरव और पांडव खेल रहे थे, एक जगह वर्णन है कि गेंद से खेल रहे थे, एक जगह वर्णन है गुल्ली डंडा खेल रहे थे, पता नहीं क्या खेल रहे थे उस समय। तो जो भी खेल रहे थे वो जो उनकी गेंद या जो गुल्ली है वो अंदर चली गई, कुआं था एक सूखा कुआं, उसमें गिर गए। सब विचार करने लगे कैसे निकाले, तो दूर देखा द्रोण बैठे हुए थे द्रोणाचार्य, तो लोग उनके पास गए, हमारी बॉल निकाल दीजिए, गेंद निकाल दीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारे ये, उस समय तक इन्हें धनुष बाण चलाना आता था, सीख लिया था इन्होंने, कृपाचार्य ने सिखलाया था। तो द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारे धनुष बाण का कोई लाभ नहीं है, तुम्हें गेंद नहीं निकाल सकते उससे। तो उन्होंने कहा धनुष बाण से गेंद कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं दिखाता हूं। उनकी एक अंगूठी थी, उन्होंने ऐसे अंगूठी फेंक दी नीचे, बोले तुम्हारी गेंद नहीं, अंगूठी भी निकाल दूंगा मैं धनुष बाण से। और फिर उन्होंने कुछ तिनके लिए, उनको मंत्र कहा और एक एक तिनका ऐसे फेंकने लगे। तो एक तिनका सीधा गया उनके जो गेंद थी उसके ऊपर हुआ, दूसरा तिनका उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, ऐसे फेंकते फेंकते पूरा ऊपर तक आ गए। और फिर उन्होंने उस तिनके को पकड़कर खींचा, बॉल बाहर आ गई। युधिष्ठिर और कौरव ने देखा तो हैरान हो गए, ये क्या किया, आश्चर्य, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और फिर उन्होंने एक तीर लिया और अपनी जो अंगूठी फेंकी थी वो भी तीर से बाहर निकाल दी। तो कहने लगे आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका, आपको ये सब कैसे आया। तो द्रोणाचार्य ने कहा एक काम करो, आप लोग भीष्म के पास जाओ और भीष्म से जाके केवल इतना कहना जो मैंने किया है, जो तुमने देखा है, ये भीष्म को बताना। तो लोग तुरंत गए भीष्म के पास, पितामह पितामह क्या हुआ, एक ब्राह्मण है, हाँ तो फिर तो उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। तो भीष्म ने सोचा ये द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो फिर वो आए और उस समय द्रोणाचार्य से उन्होंने उनका जीवन पूछा कि क्या बात है, आप कैसे जीवन जी रहे। तो द्रोणाचार्य ने अपनी कथा सुनाई कि जब मैं गुरुकुल में था तो द्रुपद मेरे मित्र थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि द्रोण जिस दिन मैं राजा बनूंगा, मेरे पिता मुझे राजा बनाएंगे, उस दिन ये जान लो कि जितना अधिकार मेरा होगा राज्य पर उतना ही तुम्हारा होगा, तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। तो खैर ये वो बात हो गई। उसके बाद द्रोणाचार्य बड़े हुए, विवाह किया और फिर जब उनका पुत्र हुआ अश्वत्थामा, बहुत गरीब थे द्रोणाचार्य, तो उनके पास दूध खरीदने के लिए, दूध लेने की व्यवस्था नहीं, उस समय दूध खरीदा नहीं जाता था, गायों से निकाला जाता था, तो गाय नहीं थी उनके पास और अश्वत्थामा दूध पीना चाहता था। तो द्रोणाचार्य ने विचार किया कि मुझे कहीं से गाय दान में मांग कर लानी चाहिए। लेकिन देखिए ऐसी गरीबी अवस्था में भी द्रोणाचार्य ने सोचा कि मुझे उस व्यक्ति से गाय नहीं मांगनी चाहिए जिसके पास केवल एक या दो गाय हैं, क्योंकि उसको दूध चाहिए होगा जिससे वो यज्ञ इत्यादि कर सके, तो मुझे ऐसे व्यक्ति से लेनी चाहिए जिसके पास हजारों गाय हैं। तो वो बहुत घूमे, उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिससे वो गाय दान ले सके। वापस आए तो उन्होंने देखा अश्वत्थामा बहुत छोटा था और बाकी बच्चे उसको उसके साथ मजाक कर रहे थे। तो क्या करते थे, आटा जो होता है आटे को पानी में मिलाते थे, सफेद सफेद घोल बनता था और उसको कहते थे ये देखो दूध है, और अश्वत्थामा उसको पीता था और कहता था मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता था दूध क्या होता है, केवल ये पता था दूध पीना है, सफेद होता है, वो पी लेता था। तो जब द्रोणाचार्य ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया कि मेरे पुत्र को मैं क्या कर रहा हूं, दूध भी नहीं दे सकता। तो उन्होंने निर्णय किया कि ठीक है मैं द्रुपद के पास जाऊंगा, मेरा मित्र है, इतना बड़ा राजा है, तो मैं वहां जाऊंगा। तो अपने परिवार को लेकर, पत्नी और बच्चे को लेकर वो द्रुपद के पास आए। द्रुपद राजा हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। द्रोण आए, हाथ जोड़े और द्रोण ने उनसे कहा कि द्रुपद, मैं तुम्हारा मित्र हूं, द्रोण, पहचाना मुझे? तो उस समय द्रुपद ने देखा द्रोणाचार्य की ओर और उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि है या नहीं? द्रोणाचार्य एकदम हैरान हो गए, अरे क्या हो गया? उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम, कौन सी मित्रता की बात कर रहे हो? अरे मित्रता बराबर वालों में होती है। अमीर व्यक्ति एक राजा राजा से मित्रता कर सकता है, तुम गरीब ब्राह्मण होकर मुझसे मित्रता करना चाहते हो? और किसकी, वो बचपन की बात कर रहे हो? अरे बचपन में तो बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, वो थोड़ी याद रखा जाता है, वो थोड़ी गंभीरता से कहते हैं। तो बचपन की बातों को याद करके तुम अब मित्रता कर रहे हो, बड़ी मूर्खता है तुम्हारी। द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ, वो कोई राज्य मांगने नहीं आए थे, उन्होंने तो सोचा मेरा मित्र राजा है, मैं मिलूंगा, कुछ थोड़ा बहुत ले लूंगा, लेकिन राज्य की कामना तो उन्होंने नहीं की थी। लेकिन द्रोणाचार्य का इतना अपमान कर दिया सबके सामने, तो द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने एक मन में निर्णय लिया कि मैं अपने ऐसे शिष्य आगे चलकर बनाऊंगा, या ऐसे शिष्यों को मैं प्रशिक्षण दूंगा जो इस द्रुपद को हराएंगे। अब चाहते तो द्रोणाचार्य खुद हरा सकते थे, उनके अंदर शक्ति थी, उन्होंने क्यों नहीं हराया द्रुपद को? क्योंकि उनके मित्र थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग आगे चलकर कहें कि राज्य के लिए एक मित्र ने मित्रता त्याग दी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं खुद अपने शिष्य, क्योंकि शिष्य और गुरु, गुरु की जो ज्ञान होता है वो शिष्य को जाता है, पुत्र के समान होता है, तो पिता के कार्यों को पुत्र पूरा करता है, इसलिए मैं ऐसे शिष्य बनाऊंगा। तो उन्होंने भीष्म से कहा कि ये मेरी इच्छा है। भीष्म ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप यहां रहिए हस्तिनापुर में, हम आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, आप हमारे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाइए, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाइए। तो उस समय द्रोणाचार्य ने प्रण लिया था कि ठीक है, क्योंकि आप मुझे क्षत्रियों के लिए, आप क्षत्रिय हैं, आप राजा हैं, और आप मुझे कार्य दे रहे हैं, और इसीलिए मैं केवल राजकुमारों को ही सिखाऊंगा। तो ये उनका प्रण था भीष्म के प्रति, क्योंकि भीष्म ने उनको कार्य पर रखा था कि आप राजकुमारों को ही सिखाइए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं राजकुमारों को सिखाऊंगा। तो उन्होंने प्रारंभ किया सिखाना, लेकिन अपने पुत्र से बड़ी आसक्ति थी। देखिए, व्यक्ति की पुत्र आसक्ति, द्रोणाचार्य की पुत्र आसक्ति अंत तक नहीं गई, उनकी मृत्यु भी केवल पुत्र आसक्ति से हुई, नहीं तो कोई मार नहीं सकता था द्रोणाचार्य को। जिस तरह से वो युद्ध कर रहे थे उस दिन, द्रोणाचार्य को कोई नहीं मार सकता था, लेकिन पुत्र आसक्ति। तो अभी सिखाना शुरू किया था, तो अपने पुत्र से आसक्ति थी, तो उनकी इच्छा रहती थी कि बाकी राजकुमार जो भी सीख रहे ठीक है, मेरा पुत्र सारी अच्छी चीजों को सीख ले। तो वो क्या करते थे, सबको एक कार्य दिया करते थे कि जाओ नदी से पानी भर के लाओ। तो बाकी सबको तो बहुत छोटे मुंह वाला चीज दिया, जिससे कि समय लगे पानी भरने के लिए, लेकिन अश्वत्थामा को बहुत बड़े मुंह वाला दे देते थे, ताकि अश्वत्थामा जल्दी से जाए, पानी भर के आ जाए, और जब पहले आ जाता था तो उसको बिठा के वो कुछ ऐसी बातें सिखा देते थे जो बाकी सब नहीं सीख पाते थे। जब तक वो आते थे तब तक इसको कोई एक मंत्र, कोई एक अस्त्र सिखा देते थे। अर्जुन ये जान गए अर्जुन ने देखा कि ये द्रोणाचार्य कुछ ऐसा करते हैं, अपने पुत्र को कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहे, तो अर्जुन भी सीखना चाहते थे। तो अर्जुन क्या करते थे, उन्होंने वायव अस्त्र, वायव अस्त्र मतलब पानी भर देते तुरंत, उसकी विद्या सीख ली थी। तो बाकी लोग जाते बड़े धीरे से बैठकर पानी भरा करते, समय लगता, अश्वत्थामा जल्दी से भरता भागता, तो अर्जुन क्या करते, इधर उधर देखते, तीर चलाते, पानी भर जाता, वो भी भाग जाते पीछे पीछे अश्वत्थामा के, और वहां जाके जो गुरु कहते वो भी सीख लेते। तो द्रोणाचार्य देख रहे थे कि अर्जुन सही में बहुत जल्दी सीख रहा है। तो एक दिन उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया, कौरवों को, पांडवों को, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी एक इच्छा है। और क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब मैं तुमको सब सिखा दूं तो आप लोग मेरे लिए एक कार्य करें, एक गुरु दक्षिणा दें, एक राजा को बंदी बना कर लाएं। तो सारे लोगों में से किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया, केवल अर्जुन ने स्वीकार किया। अर्जुन ने कहा मैं वचन देता हूं, अभी सीखा नहीं था, अर्जुन ने कहा मैं वचन देता हूं मैं उनको बंदी बना कर लाऊंगा। और तब से अर्जुन के ऊपर बहुत ध्यान देने लगे, उन्होंने बहुत प्रेम हो गया, गले से लगाया, अर्जुन को बोला मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा मैं। कुछ समय बीत गया, द्रोणाचार्य ने जो लोग प्रसाद दिया करते थे पांडवों को कौरवों को, उनसे कहा था कि ध्यान रखना अर्जुन को कभी अंधेरे में प्रसाद नहीं देना, खाना नहीं देना अंधेरे में, जब भी देना प्रकाश में देना। तो लोग ध्यान रखते थे। एक समय अर्जुन खा रहे थे और अचानक जो दीपक जल रहा था वहां तो दिए हुआ करते थे, लाइट और इमरजेंसी लाइट वगैरह नहीं थी उस समय कि सब जल रहा है, तो जो दिया था वो बुझ गया हवा के कारण और अर्जुन खा रहे थे। तो जैसे अंधेरा हो गया, पूर्ण अंधकार हो गया, अर्जुन खाते रहे और अर्जुन ने खाते हुए सोचा कि अरे अगर मैं ठीक तरह से अंधेरे में खा सकता हूं तो मैं अंधेरे में तीर भी चला सकता हूं। तो तब से उन्होंने रात्रि का अभ्यास प्रारंभ कर दिया और जब द्रोणाचार्य ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। और तब से बाकी सब सो जाया करते थे, अर्जुन रात को अभ्यास करते थे तीर चलाने का, धनुष बाण का। देखिए हमारे जीवन में अगर हमें सफलता चाहिए तो मेहनत करनी होती है, ऐसे सफलता नहीं आती है। आज हम अर्जुन का गुणगान करते हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इत्यादि, लेकिन कितनी मेहनत की उसने, हर रात को जागा करते थे वो तीर चलाने के लिए, अभ्यास के लिए। तो ऐसे अभ्यास हो रहा था, काफी समय बीत गया। एक समय परीक्षा लेनी थी, द्रोणाचार्य ने सबको बुलाया, एक लकड़ी का पक्षी पेड़ के ऊपर रखा और कहा कि इसका सर आपको काटना है, इस पक्षी का अपने तीर से। तो सबको एक एक बुलाया, पहले युधिष्ठिर को बुलाया, उठाओ धनुष बाण निशाना लगाओ, धनुष बाण का निशाना लगाया। यहां पर खड़े थे द्रोणाचार्य, उन्होंने पूछा, ऐसे लगा के खड़े रहे कुछ क्षण, उसके बाद पूछा युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें पक्षी दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है और मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ मुझे पक्षी भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, आप भी दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा हट जाओ साइड में, कोई फायदा नहीं तीर चलाने का, तुमसे नहीं होगा। दूसरे को बुलाया, तो कोई कहता हाँ मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, हट जाओ हट जाओ, सब हट। अंत में अर्जुन को बुलाया। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न थे क्योंकि जानते थे कि ये सही उत्तर देगा। तो अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से भी कहा निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया, ऐसे दो मिनट खड़े थे, फिर पूछा द्रोणाचार्य ने, अर्जुन तुम्हें क्या वो पक्षी का शरीर या फिर वृक्ष और मैं सब दिखाई दे रहे हैं ना? अर्जुन ने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल पक्षी दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न किया, अच्छा पक्षी के अंग दिखाई दे रहे हैं ना ठीक से, कैसे उसके पंख हैं इत्यादि? अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल उसका सर दिखाई दे रहा। द्रोणाचार्य ने कहा चलाओ तीर, और अर्जुन ने तीर चलाया, सर धड़ से अलग। तो ये परीक्षा हुई थी। तो एक समय सारे लोग जंगल में चले गए, कौरव और पांडव, द्रोणाचार्य नहीं गए थे ऐसे ही शिकार के लिए, तो उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चला गया। और चलते चलते वो उस स्थान पर आए जहां पर एक भील, एक निषाद बालक एकलव्य अभ्यास कर रहा था धनुर्विद्या का। वैसे एकलव्य पहले द्रोणाचार्य के पास आया था, द्रोणाचार्य के पास कौरव पांडवों के अलावा और भी कई लोग आए थे जिनको वो सिखा रहे थे धनुर्विद्या, लेकिन वो सब राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, क्योंकि उन्होंने भीष्म को वचन दिया था कि मैं केवल राजकुमारों को क्षत्रियों को सिखाऊंगा। तो जब एकलव्य आए तो एकलव्य ने कहा मैं भी सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने देखा कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो हो सकता है कल को हस्तिनापुर के विरुद्ध ये युद्ध करे, और मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाऊं जो हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध करे। तो उन्होंने मना कर दिया, एकलव्य से कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। इसके दो कारण, पहला उन्होंने वचन दिया था भीष्म को कि मैं केवल राजकुमारों को सिखाऊंगा। कई बार लोग इस प्रसंग को लेकर बहुत विवाद करते हैं, कह रहे देखो द्रोणाचार्य ने अन्याय किया, वो छोटी जाति का था, उसको सिखाया नहीं, इतना दक्ष था, अन्याय, कोई अन्याय नहीं किया, उन्होंने तो वचन दिया था कि मैं राजकुमारों को सिखाऊंगा, वो अपने वचन को पूरा कर रहे थे। दूसरा, वो जानते थे कि ये जो निषाद है ये हस्तिनापुर पर आक्रमण करते रहते हैं, तो मैं जिसके घर में रहकर जिनका खा रहा हूं नमक, कैसे उनके विरोधी को, कैसे उनके शत्रु को मैं सिखा सकता हूं, तो इस कारण से उन्होंने मना किया था। इसीलिए जानना चाहिए एकलव्य के साथ कोई अन्याय नहीं किया था उन्होंने। तो एकलव्य चले गए और उन्होंने गुरु की मूर्ति बना ली, उन्होंने कहा मैं तो द्रोणाचार्य से ही सीखूंगा, उन्होंने एक मूर्ति बनाई और फिर सीखने लगे, बहुत दक्ष हो गए। अब जब ये लोग सब आए, इनके साथ कुत्ता भी था, वो पहुंच गया और उसने एकलव्य को देखा, तो एकलव्य जंगल में रहते थे, काला शरीर था, कपड़ों पे सारी मैल लगी हुई थी, कुत्ते ने जैसे देखा भौंकने लग गया, तो जैसे वो भौंका तो एकलव्य ने तीर चलाए, सात तीर एक साथ मारे, वो सीधे उसके मुंह में चले गए कुत्ते के, लेकिन आश्चर्य की बात ये एक बूंद खून नहीं निकला, तो कुत्ते को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तीरों ने केवल उसकी आवाज बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया, और वो कुत्ता ऐसे सात तीर लिए हुए पांडवों और कौरवों के सामने आ गया। तो इन जब ने देखा, अरे आश्चर्य, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसे तीर चलाए हैं, देखो एक बूंद खून नहीं, कुत्ते को कोई कष्ट नहीं हुआ, केवल उसकी आवाज बंद हो गई और सातों तीर उसके मुंह में अंदर। तो वो लोग गए, देखा तो एकलव्य था, तो उससे पूछा कौन हो तुम, उसने कहा मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। तो अर्जुन ने कहा अच्छा द्रोणाचार्य का शिष्य, हमें नहीं पता। बोला हाँ मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। तो खैर अर्जुन सब वापस आए और अर्जुन ने फिर द्रोणाचार्य से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। उन्होंने कहा वचन दिया था, लेकिन आपने तो एकलव्य को मुझसे अच्छा सिखाया, एकलव्य मुझसे अच्छा जानता। द्रोणाचार्य का मैं नहीं जानता एकलव्य कैसे सीखा, वो आपका शिष्य है बोल रहा। अच्छा चलो, तो वहां पर आए, देखा एकलव्य वहां पर अभ्यास कर रहे। एकलव्य ने जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा तुरंत प्रणाम किया, बहुत खुश हो गया कि मेरे गुरु आए हैं। उनको बिठाया, उनकी पूजा अर्चना की और उनसे पूछा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा तुम मुझे गुरु मानते हो? तुमने कहा हम, आप मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, जो तुमने सीखा है उसकी दक्षिणा। तो एकलव्य ने कहा आप मांगिए क्या चाहिए, जो भी मेरे क्षमता है मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए, सीधे हाथ का अंगूठा, क्योंकि ऐसे पकड़ा जाता है और ऐसे खींचा जाता है बाण, तो खींचने के लिए अंगूठा चाहिए। अगर अंगूठा नहीं है तो इन दो उंगलियों से खींचना होता है, वो फिर इतना दक्ष नहीं हो सकता। अंगूठे से ऐसे खींचते हैं और छोड़ा जाता है ऐसे, तो अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा काट कर दे दिया, कोई सोचा नहीं कि ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कलयुग आ गया, ये क्या है, ये कैसे आप मांग रहे हो, कैसे गुरु हो। नहीं, गुरु ने कहा, उन्होंने अंगूठा काट कर दे दिया एकलव्य। और उस समय प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने उनको वो कला सिखलाई कि जो दो हाथों उंगलियों से कैसे तीर चलाना है, वो कला प्रदान की उन्होंने। उस समय प्रसन्न हुए कि तुमने तुरंत, जानता था एकलव्य कि अगर मैं अंगूठा काट दूंगा तो कभी तीर नहीं चला पाऊंगा, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको वो कला सिखाई कि चिंता नहीं करो, अंगूठा गया है, तुम दो उंगलियों से चला सकते हो, ये कला उसको सिखलाई। तो इसमें भी लोग कहते हैं कि देखिए ठीक है, वहां अन्याय नहीं किया, यहां अन्याय कर दिया। अरे अर्जुन से अच्छा था तो उसका अंगूठा छीन लिया, ये तो गलत है। अर्जुन का काट सकते थे क्या अंगूठा? अर्जुन से क्यों दक्षिणा नहीं मांगी ऐसी, एकलव्य से मांग ली, तो अन्याय किया। आप लोग को लगता है अन्याय हुआ एकलव्य के साथ? है ना, एकलव्य के साथ अन्याय हुआ, उसका अंगूठा मांग लिया, दरअसल अन्याय नहीं किया। एकलव्य के साथ जो उन्होंने किया वो न्याय था, और न केवल न्याय, वो आगे आने वाले लोगों के लिए, वंशों के लिए वो एक मर्यादा स्थापित कर रहे थे द्रोणाचार्य। कैसी मर्यादा? पहली चीज, एकलव्य ने गुरु की आज्ञा की अवज्ञा की, द्रोणाचार्य ने कहा था मुझसे नहीं सीखना, और एकलव्य ने कहा मैं आपसे ही सीखूंगा, उनकी मूर्ति बनाकर सीख रहा, उनको ही गुरु मान रहा। सबसे पहली चीज उसने अवज्ञा की गुरु की, और इस कारण से अंगूठा मांगा उन्होंने, ताकि आगे आने वाला समाज, आगे आने वाले वंश ये जाने कि गुरु की अवज्ञा कर व्यक्ति सफलता को अगर प्राप्त करता है तो केवल उत्पात मचा सकता है। इस दृष्टि से अगर वो अंगूठा नहीं लेते और उसको और उपहार दे देते तो आगे आने वाले वंश भी, आगे आने वाले लोग भी अपने गुरु को स्वीकार नहीं करते, गुरु की बातों को स्वीकार नहीं करते, गुरु के आदेश को स्वीकार नहीं करते। और भक्ति मार्ग में सबसे पहला नियम ये है कि हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए, जो गुरु कहे वो करना चाहिए, उससे लाभ होता है। अगर एकलव्य ने गुरु के कहने पर नहीं सीखा होता, ठीक है आपकी नहीं इच्छा, मैं नहीं सीखूंगा, उसको निश्चित लाभ होता, भले वो धनुर्धर बनता या नहीं बनता, लेकिन लाभ निश्चित होता। लेकिन उसने विरोध किया अपने गुरु का कि नहीं, गुरु ने मना किया, नहीं मैं करूंगा, ये भावना सही नहीं थी। द्रोणाचार्य ऐसी भावना को, ऐसे नियम को, ऐसी परंपरा को समाप्त करना चाहते थे कि आगे चलकर लोग इसे परंपरा नहीं बनाए कि देखो जब एकलव्य ने किया तो हम भी कर सकते हैं, और द्रोणाचार्य ने उसको उपहार दिए थे, नहीं, इसीलिए दंड दिया कि गुरु की आज्ञा का पालन आवश्यक है। तो इसलिए एकलव्य के साथ अन्याय नहीं हुआ, जो भी उन्होंने किया समाज में एक नियम स्थापित करने के लिए किया। दूसरा कारण यह भी था कि ये निषाद थे, हस्तिनापुर पर आक्रमण करते थे, और द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई शत्रु उत्पन्न हो हस्तिनापुर का। तो ऐसे एकलव्य कि अंगूठा लेकर वापस आए, लेकिन अगर अन्याय किया होता तो उसको वो तीर चलाने की कला प्रदान नहीं करते दो उंगलियों से। तो लोग ये जानते हैं कि अंगूठा ले लिया, लेकिन उसको इतनी बड़ी कला प्रदान की ये कोई नहीं जानता। महाभारत में वर्णन है इसका, तुरंत उसी समय उन्होंने खुश होकर वो कला प्रदान की। क्यों कला प्रदान की? क्योंकि वो दिखलाना चाह रहे थे, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तवहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम, कि अगर गुरु की कृपा हो तो फिर पंगुं लंघयते गिरिं, मूकं करोति वाचालं, जो मूक है बोल नहीं सकता वो बहुत सुंदर बोलने लगता है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, जिसके पांव नहीं है, लंगड़ा है, वो बड़े बड़े पर्वत पार कर सकता है। पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तब हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। तो इसीलिए उन्होंने कृपा की कि अंगूठा ना होते हुए भी एकलव्य तीर चला सकता है, और युद्ध में एकलव्य ने दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया, अधर्म की तरफ से। तो इसीलिए ये नहीं जानना चाहिए कि अन्याय किया, एक स्थापना, एक परंपरा स्थापित की, और साथ साथ उसको वरदान भी दिया कि वो अपनी दोनों उंगलियों से तीर चला सके, और एकलव्य ने चलाए भी अच्छे। तो ऐसे एकलव्य का प्रसंग दिया गया, कौरव पांडव बड़े होने लगे, द्रोणाचार्य उनको अच्छे से सिखला रहे थे, और फिर वो समय आया जब द्रोणाचार्य को दक्षिणा देनी थी, गुरु दक्षिणा। अब ये लोग सीख चुके थे, अब द्रोण चाहते थे कि उनको दक्षिणा दी जाए, क्योंकि भीष्म ने तो जब शुरुआत में आए थे द्रोणाचार्य, तो भीष्म ने पूछा था, तो उन्होंने सारा प्रसंग बताया था द्रुपद का, और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे शिष्य उत्पन्न करना चाहता हूं, उनको ऐसा बनाना चाहता हूं, ऐसे योद्धा जो जाके द्रुपद को हरा सके। तो यही उनकी गुरु दक्षिणा थी। दरअसल जब वो आए थे तो भीष्म ने बड़ा स्वागत किया उनका, जबकि वो बहुत गरीब थे, खाने के लिए नहीं था, रहने का स्थान नहीं था, कृपाचार्य के घर में रह रहे थे, लेकिन भीष्म ने बहुत स्वागत किया, और उसका कारण था उनके गुण। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि हमें व्यक्ति को उसके गुणों से पहचानना चाहिए, व्यक्ति की महानता उसके गुणों से होती है, बाहरी दिखावे से नहीं, शरीर से नहीं, धन से नहीं, ऐश्वर्य से नहीं, उसके गुणों से होती। तो क्या देखा उन्होंने? भीष्म ने गुण देखे। वो तो बहुत गरीब थे द्रोणाचार्य, तो भीष्म ने ऐसा नहीं कहा मैं बहुत बड़ा राजा हूं, ले थोड़ा बहुत पैसा लो चले जाओ, नहीं, बहुत मान सम्मान दिया कि आप हमारे यहां रहिए, जो आपको चाहिए हम देंगे, क्योंकि गुण थे, लक्षण थे। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य वहां रहकर सिखलाने लगे। और अब जब पूर्ण हो गई तो उस समय अब अर्जुन अब सारे कौरवों और पांडवों से वो अपनी दक्षिणा मांगने वाले हैं कि क्या दक्षिणा मुझे चाहिए। तो जो दक्षिणा उन्होंने मांगी और कैसे दुर्योधन इत्यादि ने दी या युधिष्ठिर इत्यादि ने दी, इसका वर्णन हम लोग अगले मंगलवार को करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी अगर आप लोग पूछना चाहें तो हाथ ऊपर कीजिए, आपको माइक दिया जाएगा। माइक दीजिए। किसी का कोई प्रश्न? यहां पे आगे भी एक प्रश्न है। पीछे हमको देना था।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
जैसा कि आपने बताया कि जब द्रोणाचार्य दोनों विद्या सिखा रहे थे तो उन्होंने उनका लड़का और स्थाना भी थे, और उन्होंने पानी भरने के लिए चौड़ा मूल वाला पकेट दे दिया था जिसमें जल्दी भर के आ जाते थे, तो यह बाकी के शिष्यों से नाइंसाफी नहीं हुआ? जो कि इतने महान गुरु थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उनके पुत्र के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति थी इसलिए वो ऐसा कर रहे थे, इसके पीछे क्या?
पुत्र आसक्ति और कुछ नहीं, यही हमने कहा। पुत्रासक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। उन्होंने केवल सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, सारे अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ गए। तो ये इतनी आसक्ति पुत्र में है, ये बचपन से जब से छोटा था तब से उनको आसक्ति थी। तो केवल पुत्रासक्ति से, इसलिए आसक्ति इतनी बुरी है, आसक्ति इतनी बुरी चीज है कि वो हमें अधर्म करने पर प्रेरित करती है। जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की भी आसक्ति पुत्र में थी, इसीलिए उसने सारे उसके अधर्मों को अनुमति दी। द्रौपदी का चीर हरण, या फिर जुए में धोखे से हराना, लाक्षाग्रह, विष इत्यादि, ये सब पता था दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को, लेकिन उन्होंने चुप रहे, वो अनुमति दी। पुत्र आसक्ति, तो आसक्ति ये अधर्म को जन्म देती है, क्योंकि हमारी आसक्ति किसी भौतिक, यही आसक्ति अगर कृष्ण में हो जाए तो उद्धार हो जाता है। तो आसक्ति दो तरह के दरवाजे खोलती है, एक नरक का और एक धाम का भगवान के। अगर हमारी आसक्ति भौतिक चीजों में है तो वो अधर्म की ओर ले जाती है हमें, जैसे दुर्योधन, जैसे धृतराष्ट्र हैं, द्रोणाचार्य हैं इत्यादि। लेकिन वही आसक्ति अगर हमारी भगवान में हो जाए, श्री कृष्ण में, वही तीव्रता जैसे उनकी आसक्ति पुत्र में है, पुत्र पुत्र पुत्र, वही कृष्ण 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 हो जाए, तो वो मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। इसीलिए भक्ति का मार्ग ये है कि हम भौतिक चीजों से आसक्ति को कम करें, भगवान से आसक्ति को बढ़ाएं, ये भक्ति है। ठीक है।
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण।
ये द्रोणाचार्य प्रभु जी, आपने बताया भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे, भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे, बट दूसरे जो कृपाचार्य थे जिनकी बहन से इनकी शादी हुई द्रोणाचार्य की, उनके बारे में और बताइए जरा प्रभु जी, उनके किन के पुत्र थे?
शार्दवान, शार्दवान के पुत्र थे, उनके पिता का नाम था शार्दवान, वो भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। इन दोनों का जन्म एक साथ हुआ था। महाराज शांतनु को ये जंगल में मिले थे, कृपा और कृपी, वो जानते नहीं थे कौन है, लेकिन उनके लक्षणों से उन्होंने पहचाना कि ये ब्राह्मण के पुत्र हैं, तो वो दोनों को ले आए, दोनों भाई बहन को, और उठा कर ले आए और उन्होंने लोगों से कहा, अपने ही पुत्र की तरह उनको पाला, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण के लक्षण थे इसलिए उनको उन्होंने सब धनुर्विद्या इत्यादि धनुर्वेद ब्राह्मणों के कार्य इत्यादि सिखाए। और क्योंकि इन्होंने शांतनु महाराज ने कृपा की थी इनके ऊपर, इसीलिए इनका नाम कृपा और कृपी पड़ा, बहन कृपी और भाई का नाम कृपा, और वो फिर आगे चल के इनके कुलगुरु बने क्योंकि ब्राह्मण से थे। तो शांतनु महाराज लेकर आए थे। प्रश्न है।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
प्रभु जी, प्रश्न है। हम सभी ने सुना है कि हर एक में कृष्ण निवास करते हैं, तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे दुनिया में अभी बहुत अधर्म चल रहा है, हम देखते हैं कि बहुत सारे आतंकवादी जो हैं लोगों को मार देते हैं, क्या उनमें भी भगवान का वास है?
निश्चित।
तो वो ये अधर्म करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है?
भगवान कुछ करते क्यों नहीं? राइट।
ये क्वेश्चन है,
अगर उनमें भगवान है तो भगवान कुछ करते नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान जो हृदय में विराजमान है उनका वर्णन है, परमात्मा का, परमात्मा स्वरूप भगवान, और उनके विषय में लिखा गया है कि उनका कार्य क्या है, उपदृष्टा अनुमंताचा भर्ता भोक्ता महेश्वरः। उपदृष्टा केवल देखते हैं कार्यों को क्या कर रहे हैं, अनुमंता अनुमति देते हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वरः। तो उन आतंकवादियों के हृदय में भी हैं भगवान और हम सब के हृदय में भी हैं, फिर भी हम लोग गलत कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान को देख नहीं पाते। भगवान हैं लेकिन आतंकवादी उन्हें देख नहीं रहे, उनकी ओर मुड़े नहीं हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण उपनिषदों में दिया गया है, एक वृक्ष के उदाहरण से। एक शरीर की तुलना वृक्ष से की गई है जिस पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जो फल खा रहा है और दूसरा जो केवल उसे देख रहा है। जब तक ये फल खाने वाला पक्षी जो देख रहा है उसकी ओर मुड़ता नहीं है, तब तक ये पक्षी देखता रहता है, लेकिन जिस दिन वो मुड़ जाता है उसकी ओर, तब वो उसको और लाभ प्रदान करता है। तो ये जो फल खाने वाला पक्षी है ये जीव है, आत्मा, और जो देखने वाला है उपदृष्टा, ये परमात्मा है। तो दोनों हैं यहाँ पर, हर एक जीव। तो जो फल अच्छे बुरे कार्य जो करते हैं लोग अपने कर्मों से करते हैं, अपने कर्मों से उनका स्वभाव प्राप्त होता है और स्वभाव के चलते वे लोग और कर्म करते हैं। एक कर्म दूसरे कर्म के बीज को जन्म देता है, फिर वो कर्म करते हैं तो उससे और एक कर्म का बीज जन्म हो जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, और ये जो चक्र है ये उस फल खाने के समान है। तो व्यक्ति हत्याएं करता है, मर्डर करता है, आतंकवाद फैलाता है, अच्छे कार्य करता है, बुरे कार्य, ये सब चक्र है, चलता रहता है। और जो भगवान है परमात्मा के रूप में, वो उसकी साक्षी लेते रहते हैं, हाँ ये किया ये किया, फिर इसकी जो पनिशमेंट है वो आपको मिलेगी। तो भगवान श्रीमद् भागवत में 6 स्कंद में कई साक्षी दिए गए, उनमें से एक परमात्मा भी साक्षी है। साक्षी मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, तो वो नोट करते हैं और उसके अनुसार फिर भौतिक प्रकृति से उन्हें दंड मिलता है। तो भले आज वो आतंकवाद फैला रहे लेकिन उनके लिए दंड भी निश्चित किया गया है, भगवान उन्हें दंड भी देते हैं।
जो जो उनको जो मासूम बच्चे मरते हैं, कई जैसे अभी इराक में कुछ घटना हुई थी, उसमें जो मासूम बच्चे मर जाते हैं उनके, तो वो उनकी गलती है इनमें?
हाँ,
जो इनोसेंट लोग हैं,
जो मासूम बच्चे मरते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आप किसी बच्चे को गर्भ में मार देते हो, तो उस व्यक्ति को केवल मारते नहीं है, जो मारता है, जो अनुमति देता है, जो करता है, ये सब, तो उस व्यक्ति को 100 जन्म तक सूर्य दिखाई नहीं देता, 100 जन्म तक। अब ये सुनने में बड़ा विचित्र लग सकता है, किसने देखा है, लेकिन यही कारण है कि बच्चा गर्भ में मरा जाता है, क्योंकि उसने वो कर्म किया है तो उसका वो फल भुगत रहा है। क्योंकि बच्चा तो अभी बाहर आया ही नहीं, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? मतलब कुछ तो कहीं पीछे का कनेक्शन है। तो पीछे का कनेक्शन यही है कि उसने जो कार्य किए थे तो फिर उसके लिए उसको ये फल हो रहा है। तो ऐसे कई पूर्व कर्मों के अनुसार इन बच्चों को उछेलना पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को कर्म के अनुसार मरना है, अगर मैंने मार दिया तो मेरी क्या गलती है। नहीं, आपको अधिकार नहीं, आतंकवादियों को अधिकार नहीं है मारने का, इसलिए उन्हें दंड मिलता है। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि एक सैनिक युद्ध भूमि में लड़ता है तो वो लड़ते लड़ते कई दुश्मन को मारता है, कभी कभी एक साथ अकेले 20-30 लोगों को मार देता है, वापस आता है तो सरकार उसे पदक देती है, परमवीर चक्र और कौन कौन सा चक्र, बहुत अच्छा किया 20 लोगों को मारा अकेले। अब वही सैनिक वही बंदूक लेकर अपने घर जाता है, उसका उसके पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, वो बंदूक निकालता पड़ोसी को गोली मार देता है, क्या सरकार उसको पद्मवीर चक्र देती है? सरकार उसको जेल में डालती है। चलो, वही सैनिक है, वही बंदूक है, वही चलाने वाला है, वही गोली है, क्या अंतर है? वहां अधिकार है, यहां अधिकार नहीं है। तो यही चीज है, आतंकवादियों को अधिकार नहीं है किसी को मारने का। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के? हाँ जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, सुना जाता है कि भगवान का अवतार हमेशा धरती पर रहता है हर एक युग में, और एक अवतार एक समय में एक अवतार ही श्रेष्ठ रूप में रहता है, तो अभी इस समय पर कोई ना कोई किसी रूप में भगवान अवतार में रहे होंगे?
यस, निश्चित।
कई
कई अवतार हैं, बताते हैं आपको, कई अवतार हैं भगवान के इस समय जो उपस्थित हैं। एक अवतार है वामन अवतार, वामन अवतार ये मनवंतर अवतार हैं, बहुत लंबे समय तक रहेंगे, अभी रह रहे हैं स्वर्ग में, आपको मिलना हो तो जाकर मिल सकते हैं, तो उनसे मिल नहीं सकते, लेकिन वो हैं, वामन अवतार हैं। दूसरा, कलियुग में शास्त्रों में बताया गया कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग में कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेते हैं। चैतन्य भागवत में बताया गया है कि कलियुग में चार रूपों में श्री कृष्ण आते हैं, गंगा के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में, और तुलसी के रूप में, और वैष्णवों के रूप में, ये उनके अवतार हैं। और फिर अर्च विग्रह जो प्रमाणिक हो, शास्त्र के आधार पर बनाए गए हों, ऐसे अपने मनगढ़ंत नहीं, तो वो भी भगवान के रूप हैं। तो इसलिए इस समय में भी भगवान के कई अवतार हैं। एक अवतार अभी अभी आकर गए हैं 500 वर्ष पूर्व, चैतन्य महाप्रभु, और दूसरे अभी बस आने वाले हैं 4,22,000 साल बाद कल के, तो इसके बीच में भगवान का नाम। इस समय पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं है, इस पृथ्वी पर अगर कोई अपने आप को कहता है तो आप शास्त्र के आधार पर उसको झूठा कह सकते हो, कोई इस समय शरीर रूप में यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, भगवान के रूप में हमारे विग्रह हैं, दिव्य विग्रह हैं, लेकिन जैसे आप पूछ रहे हो कि चलने वाला, हम सबसे बातचीत करने वाला, हम जिसके कंधे पर हाथ रखकर खेल सकें, वो अभी नहीं है।
आप प्रभु जी, और एक प्रश्न है, ये अगर ब्रह्मास्त्री जो वेदों का सुनना पड़ता है उसका जो भी ज्ञान है उसे भी आत्मज्ञान बताया जाएगा?
यस, निश्चित, वही आत्मज्ञान है।
ये ब्रह्मज्ञान जो है तत्व ज्ञान,
अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान हूँ ये नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म वस्तु, लेकिन पर ब्रह्म नहीं हूँ, ये स्पष्ट है। तो हाँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं आत्मा हूँ, ये तो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया भगवद गीता में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तो ये सत्य है कि हम ब्रह्म हैं, और जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो आत्म साक्षात्कारी कहलाता है। कर्मों का प्रभाव तब तक रहता है जब तक व्यक्ति भौतिक जगत में भौतिक शरीर धारण करता है, लेकिन जब वो अपने आप को इससे परे कर लेता है तो शरीर पर प्रभाव हो सकता है, व्यक्ति को प्रभाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपकी कार है, जब तक आप उसको अपनी कार मानते हैं, हम उदाहरण देते हैं, आपने कार खरीदी, नई कार, ब्रांड न्यू, आप उसकी पूजा करने के लिए मंदिर लेकर आने वाले हैं, मन घर से नीचे उतरे तो देखा वहां पर 2-3 बच्चे खड़े हैं, उन्होंने 1-2-4 पत्थर लिया, किसी ने टांग टोंग टांग सब तोड़ दिया, कुछ कर दिया, किसी ने उसका शीशा निकाल दिया, आपको आनंद आएगा? आप खुश होंगे? नहीं, क्यों? मेरी कार। कैसे आप गुस्सा हो जाएंगे, कौन है ये बच्चे, उसको कुछ संभाल के नहीं रखता, इतना नुकसान हो गया, कौन भरेगा मेरी नई कार, इत्यादि इत्यादि। वही आपके पड़ोसी की कार को कुछ ऐसा हो जाता है, आप जाके उसको बच्चे हैं कर दिया अभी क्या है, कार क्यों चिंता कर रहे हो, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, छोटे बच्चे उनको क्या समझ है कार है नहीं है, छोड़ दो, जो होता है विधि का विधान है, भाग्य में लिखा है, टूटना था कार टूट गई, ये हम दूसरों को समझाते हैं, हमारी कार टूटे तो कोई विधि का विधान नहीं है, तो क्यों, क्योंकि हमारी कार है। लेकिन वही आप अगर इस चीज से अलग हो जाओ कि ये मेरी नहीं है, ये कार ये कुछ लोहे से बना हुआ टुकड़ा है, ठीक है थोड़ा समय मेरे पास है फिर किसी और के पास होगा, तो आप प्रभावित नहीं होगे। इसी तरह ये कार है, ये जो हम लोग इस शरीर रूपी कार को लेकर चल रहे हैं, अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये मेरा नहीं है, ये इसमें मैं केवल थोड़े समय के लिए हूं, बस ये असल में मेरा नहीं है, भगवान की संपत्ति है, तो थोड़े समय तक मैं इसको संभालता हूँ फिर अलग होना, फिर कैसे आप प्रभावित हो गए कर्मों से।
मतलब इस ज्ञान में रह के अगर आदमी कर्म करता है तो पाप पुण्य के भेद से बच सकता है,
कर्म करते हैं तो
पापों के भेद से बच सकते हैं,
पाप पुण्य के भेद से, पाप पुण्य के फलों से कर्म से नहीं बचा जा सकता,
ज्ञान से,
ज्ञान से भी नहीं बचा जा सकता, केवल भक्ति से बचा जा सकता, अकर्म से। तीन तरह के कर्म भगवान ने भगवद गीता में बताए, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिहि, कि तीन प्रकार के कर्म है जिसको जान लो अर्जुन, पहला कर्म यानी अच्छे कार्य शास्त्रों से अनुमोदित कार्य, दूसरा विकर्म जो शास्त्रों में मना है वैसे कार्य, और तीसरा अकर्म जिससे कोई हमें फल नहीं मिलता अच्छा बुरा, और अकर्म का अर्थ है भगवान की सेवा। तो हमारे कर्म केवल भगवान की सेवा से बदल सकते हैं, भक्ति से बदल सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है।
हरे कृष्ण,
ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, अभी हम एक भजन गाने वाले हैं, किसी का एक आखिरी, हाँ बोलिए।
छोटा सा सवाल है,
अच्छा होगा छोटा ही होगा, तो
सभी महापुरुषों में, राजा महाराजाओं में, ऋषि मुनियों में ज्यादातर संख्या पुरुष ही होती है, औरतों या स्त्रियों की बहुत ही कम होती है, तो ऐसा इसका कोई निश्चित कारण या कोई ऐसा इसका ऐसा कारण कि औरतों को इस महामाया संसार से ज्यादा आ सकती है या कुछ ऐसा कुछ बता
इस
सकते
कमरे में है? औरतों की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की ज्यादा है, आपके सामने है, यहाँ पर यहाँ पुरुषों की कम है महिलाओं की ज्यादा है। हाँ, राज ऋषियों में इत्यादि, क्योंकि शास्त्र के नियम के अनुसार स्त्रियों को एक लाभ दिया गया, बेनिफिट दिया गया है कि पति बेचारा तपस्या करे और आधा लाभ उनको वैसे ही मिल जाए, उनको अर्धांगिनी कहते हैं, तो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो 50% ऐसे ही चला जाता है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं पति को जाओ जंगल में तपस्या करो, कोई बात नहीं चिंता मत करो, वो बेचारा जाके तपस्या करेगा, आधा लाभ उनको मिलना है, तो फिर जब उनको वैसे ही मिल रहा है उनको तपस्या की क्या आवश्यकता है। खैर, ये केवल मजाक का था, लेकिन ये सत्य भी है, क्योंकि समाज को जब बांटा जाता है तो हर एक के लिए कार्य दिए जाते हैं, नियत कर्म जिन्हें कहते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तो अपने अपने नियत कर्म करते हुए हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो किसी के लिए नियत कर्म है कि वो जंगल में जाकर तपस्या करे, यज्ञ करे, राजा बने इत्यादि, दूसरों के लिए नियत कर्म है वो उनको सहयोग करें और उससे ही वो जन्म अपने जन्म को सफल करेंगे। तो जिसके लिए जो नियत कर्म है अगर वो अपने नियत कर्म करता है तब वो सफलता को प्राप्त होता है। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है कि पुरुषों को क्यों ऐसे किया जाता है, स्त्रियों को क्यों ऐसे नहीं, स्त्रियों के लिए अलग कार्य है, पुरुषों के लिए अलग कार्य, जो कार्य स्त्रियां कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते, जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसे कार्यों का विभाजन कहते हैं ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके, और इसीलिए उन्हें ऐसे कार्य दिए गए हैं जो उनके लिए योग्य हैं। जैसे स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा है शास्त्रों में, उनको माँ का स्थान दिया गया है, तो इसीलिए उनके लिए नियत कार्य वो हैं जिसको करते हुए वो भगवान की प्राप्ति करें। और दूसरा कारण कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर नहीं आते, उसका ये भी कारण है कि स्त्रियों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, तो इसीलिए उनके लिए ये है कि वो मान सम्मान को बनाए रखने के लिए वो पीछे रहकर कार्य करते हैं, सामने नहीं आते हैं, स्त्रियों को उत्सवों में कुछ ही समयों में बाहर आने की अनुमति है, हर समय में नहीं है, शास्त्रों के अनुसार। तो इसीलिए उनको जैसे कार्य दिए गए हैं उसको करते हुए वो भगवान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है,
शुक्रिया।
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण।
तो अभी एक छोटा सा भजन गाएंगे और उसके बाद भगवान के दर्शन होंगे। कृपया इसको दोहराइए साथ में, भजन लाइट्स ऑफ कर दीजिए सारे।